آتما کی ذات وہی ہے جو پرماتما کی ذات ہے. کون کبیر رام کی سماج ہم لوگوں نے بنائی اس لیے کہ انسان مل جل کر رہنے والی ہستی ہے, سوشل بینگ ہے. خاص خاص اگر تو قوانین بنائے گئے اس کے مطابق انسان جیون بسر کر کے نیک پاک اچھا لاچاری بنے, اور منوش یاترا جو ہے جیون یاترا یہ سکھ سے بتیت ہو. انسان انسان کے کام آئے, ایک گڈ ورلڈ سٹیزن بنے, یہ سماجوں کا عادت ہے. پہلا قدم شریعت ساری دائی ہے, یہ بلے شاہ ہے. شریعت دایا کا کام کرتی ہے, بچے کے جنانے میں مددگار ہے. ایسے ہی رسم رواج جتنے ہیں قوانین سماجوں کے آپ کو اپنے, وہ اپنی آتما کو انبھو اور پربھو کے انبھو کرنے کے لیے مددگار ہے, زمین بناتے ہیں. پہلا قدم ہے جو ہر ایک انسان کو اٹھانا پڑتا ہے. آتما چیتن ہے, یہ جزو ہے اور مالک کہو پرماتما کہو کل ہے. جس کا جزو ہے اس کا کل بھی ہے. ہر ایک جزو کے اندر یہ قدرتی خواہش موجود رہتی ہے کہ وہ کل سے ملے. تو یہ تلاش کہو کھوج کہو ہر ایک انسان کے اندر دبی ہوئی موجود ہے, وہ اس کو پانے کا یتن کر رہا ہے, ہمیشہ کے سکھ کو حاصل کرنے کا یتن کر رہا ہے. مگر اس کو یہ پتہ نہیں کہ اصل سکھ ہے کہاں. ہماری آتما من کے عزیز ہے, اندری بھوگ کے عزیز, اندریوں کو بھوگ دو روپی گھوڑے کھینچے پھرتے. تو اس میں یہ دکھی اس کا بڑھ رہا ہے, بھوگوں سے روگ اور روگ سے شوق پیدا ہوتا ہے. سمجھے, بھوگوں سے روگ, روگ سے شوق. انسان سارا جہاں نہیں دکھتی جتنے بھی ہے. تو جس انتر یہ بیماری کہو یہ تلاش کہو یا کھوج کہو قدرتی طور سے موجود ہے, وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے سکھی ہونے کی خاطر. وہ اس سکھ کو پہلے باہر مکھی چیزوں میں تلاش کرتا ہے, کھانے پینے میں, انوں کے بھوگوں میں ہے. اور یہ کچھ کرتے ہوئے بھی وہ دیکھتا ہے کہ میں سکھی نہیں, پھر بھی دکھی. پھر اس کے بعد انٹلیکچوئل بدھی کے وچاروں, نئی نئی انوینشنس, نئے نئے حالات کے پیدا کرنے میں سمجھتے شاید ان میں سکھ ہے. ان میں بھی آخر دیکھتا ہے کہ سکھ نہیں. آخر ہار کر وہ اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوتا. رشی منی مہاتما دنیا میں آئے, جب سے دنیا بنی ہے یہی کھوج جاری ہے, مسٹری آف لائف کیا ہے, ہم کون ہیں, اس کو جاننا اصل سکھ کا کام. ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. ہماری آتما من کے ادھین ہے, من آگے اندروں کے ادھین ہے. اندریے کے گھاٹ پر ہم جسم اور دنیا کا روپ بنے بیٹھے ہیں, جگت کا روپ بن گئے ہیں. اتنے آئیڈینٹیفائی ہو گئے جسم کے ساتھ کہ ہم اب تمیز نہیں کر سکتے کہ ہم یہ جسم ہیں یا اس جسم کے چلانے والے ہیں. ان ڈویلر آف دی ہاؤسز ہیں یا کہ ڈویلنگ ہاؤسز دین سیلز ہیں, ہم اس مکان کے مکین ہیں یا مکان. تو ریشی منیوں نے یہ دیکھا کہ وہی इसमें तो सुख है नहीं। बाहरी पशु सब्जेक्टिव पशु में सुख परमानेंट सुख नहीं है, टेम्प्रेरी सुख कहीं कहीं नजर आता है हमको, पर वो लास्टिंग नहीं है। वो सुख भी जो हमको बाहर टेम्प्रेरी तौर पर नजर आता है वो भी हमारा अपना ही सुख है जो उसमें हम प्रतीत कर रहे हैं। जैसे कुत्ता को वो हड्डी को खा रहा हो तो हड्डी को खाते है उसका खून अपना बहता है, हड्डी में तो कोई रस नहीं, मगर वो उसमें मानता है कि हड्डी में ही रस है। ऐसे ही हमको बाहर इंद्रियों के भोगों में रस प्रतीत होता है, मगर वो रस उन भोगों में नहीं, वो रस हमारी यक्षुई में, हमारी अटेंशन के वहां पर राइवित इकट्ठा एकत्र हो जाने में। अपना खून खुद पीते हैं कुत्ते की तरह, जैसे वो हड्डी खाता है, इस गलती में सारी दुनिया जा रहे हैं। परमात्मा निजानंद का समुद्र है, हमारी आत्मा उसकी अंश है, ये भी आनंद का एक कतरा आनंदमय है, मगर ये अपने आनंद को भूल चुका है, ये दूसरों को पर रिफ्लेक्ट करके उसका रस ले रहा है। अगर ये सब करके हट जाए तो ये आनंद मुझे तो बन जाए, और सेल्फ को जान ले अपने आप को तो ओवर सेल्फ जो महा आनंद का समुद्र ठाकुर महात्रा उसमें वासिल हो जाए। इसमें बड़ी भारी एक मस्ती है, खुमार है, नशा है। सब कहते हैं कि अगर मेरे में वो नशा और वो खुद मस्ती है, निजानंद की धारे बह रही है, कि अगर मैं इस जिस्म को छोड़ जाऊं, इस जिस्म की खाद बनाकर कहीं जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन से जो कनक उगे उस कनक कि रोटी जिस तनूर में पके उससे आनंद की शोले निकली। ये कहा कि उस रोटी के खाने वाले का जिक्र नहीं किया, कहते उस रोटी के परोसने वाला मस्त हो जाए। बताओ कितना भारी आनंद, पर उस आनंद का हमें पता नहीं। हमें जो इंदू के भोगों पर थोड़ा बहुत आनंद मिल रहा था, हम सोचते यही है। अगर फरदौस बनोगे नीनस अनिनस तो नीनस तो नीनस, हम इसी में भूल में जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने आप की तरह मतोजे मुतलाशी को किया कि भाई तुम अगर हमेशा के सुख को पाना चाहते हो तो अपनी तरफ देखो। कुछ दिन अपने फकीर आप बनोदार तो बात कर देता, जब अपनी तरफ नजर आती है तो देखते हैं तो बड़ी बड़ी खामियां हैं, बड़ी शॉर्ट कमिंग्स हैं, फुल ऑफ क्या कहना चाहिए फेलियर है ये इंसान। इसके अंदर काम के वेग चल रहे हैं, क्रोध के वेग चल रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष के वेग चल रहे हैं, निंदा चुगली धड़ेबंदी में जा रहे हैं, दूसरों का बुरा चित्रण कर करके दूसरों के अवगुणों का ये भंडार बना पड़ा, अपने अवगुणों को दिन दिन बढ़ा रहा है। एज यू थिंक सो यू बिकम, अगर किसी गंदगी पर बट्टा मारोगे तो उससे क्या होगा, वो गंदगी छिटे तुम्ही पर पड़ेगी ना। हम सीआईडी की सिपाही की तरह हमेशा दूसरों पर नजर रहते, इसमें क्या होगा ना। अनपेड अप्रेंटिसिज ऑफ द सीआईडी ऑफ गॉड काम करते रहते हैं, हर वक्त दूसरे को बुरा चित्र बुराई देखने के यत्न करते हैं। अरे भाई दूसरों की तरफ देखना तो उसके गुणों की तरफ देखो, गुणों का असर आएगा ना, अवगुणों का विचार करोगे अवगुण आएंगे, गुणों का गुणगुण आएंगे। तो जिनको अपने आप की तरफ नजर आती है पहले उनको अपने आप में बड़ी खामी है, शॉर्ट कमिंग्स महसूस होती है। اس میں خیال برا چتو نہ رہا، اس کو میل سے بھی پڑی رہا. مہاتما کہتے ہیں کہ جنم جنم کی اس من کو مل لگی کالا ہوا سیاہ، جنم جنم کی اس پر میل لگی پڑی ہے، یہ کالا سیاہ ہوا پڑا من. اور آگے ہر روز اندوں کے کھاتے اس پر اور آلائش اور میلے جم رہی، وہ یہ محسوس کرتا ہوں. جب پرمار کی طرف چلتا ہے نا، اپنے آپ کی طرف نظر آتی ہے، اور میں تو بڑا بہت میں کسی لائق نہیں. جس کو یہ احساس ہونا لگے اپنے ہردے کی گہرائیوں میں جانے لگے، اس کو چھوٹی چھوٹی سے ہر ایک چھاٹ کمی خامی محسوس ہونے لگی. جس کو محسوس ہونے لگ گئی، سمجھو آپ اس کے نکلنے کا وقت آ گیا. کتا بیٹھتا ہے وہ بھی دم سے زمین کو صفا کر کے بیٹھتا، وہ میلی جگہ نہیں بیٹھنا چاہتا. معمولی سے افسر میں آنا ہو تو بھی اس کے لیے ہم کتنی صفائیاں کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ پرماتما ہمارے گھر میں پرگٹ ہو جائے. وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میلے ہردے میں کبھی آئے گا؟ کرائسٹ نے کہا بلیسڈ آر دی پیور ان ہارٹ فار دے شیل سی گاڈ. یسوع مسیح صاحب نے کہا کہ جن کے ہردے پتر ہیں وہ مبارک ہیں، کیونکہ کیول ایسے پتر ہردے ہی اس پربھو کو دیکھ سکیں گے، باقی نہیں. تو ہردے کی فطرت نہ کہو، آلائش سے پاک ہونا کہو، جنم جنم کی جو مالش میں لگی ہوئی ہے اس کو، اور ہر روز جو دن و دن اس میں بڑھ رہی ہے اس کو کاٹنے میں پرمار کی کامیابی کر رہا ہے. ایک تالاب ہے، اس پر کائی جمی ہے سبز رنگ کی، معلوم ہوتا پانی کوئی نہیں، تھوڑی سی چھوٹی ادا تھوڑا پانی مل رہا پھر کائی جم جاتی ہے. یہی حال ہمارا ہے. کبھی ستسنگ کسی کبھی وچار سے تھوڑی بہت یا ہمیشہ کے محسوس ہونے لگتی ہے، کسی کی تھوڑی جھلک آنے لگتی ہے، پھر انجانی سے سن رہتی ہے. اس کے بیسٹ سب سے اچھا علاج کیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کائی روز بات کر کے چلے جاؤ، تاکہ کائی نکل جائے پھر پانی صاف ہو. تو یہ احساس ہونے لگ رہا ہے، جس کے اندر یہ احساس آنے لگ گیا. گربانی کہتی ہے جو اپنے کو جانے نیچا سو گنیے سب سے اونچا. جو اپنے آپ کو احساس کرنے لگے تھے، اس کو محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں سب سے لوئسٹ ہوں، سمجھو اس کو وہ اونچا اونچ جا رہا. کبھی صاحب نے کیا کبیرا سب سے ہم برے، ہم تک پھلو سب کو، جس ایسا کر جانے بیت ہمارا سو. جس کو یہ احساس ہو گیا تو ہو ہوئی بات کہ میں واقعی سب سے برا ہوں. جب اپنے آپ کی طرف نظر مارو یہی محسوس ہوگا ہم کو. دوسروں کی آنکھ، جس مسیح صاحب کہتے دوسرے کی آنکھ کا مول بڑا بھاری نظر آتا، اپنے آنکھ کا شاطیر پتہ نہیں. جس نے اپنے آپ کی گہرائیوں میں ڈپ نہیں کیا، ان شارٹ کمنٹس کو جس میں بس نہیں ان کو نکالا نہیں، اس کا ہردہ کیسے صاف ہو سکتا؟ جب تک ہردہ صاف نہ ہو کام نہیں بن سکتا. پرماتما کا نانک ناؤ خدائے کا دل اچھے مکھلے، دل کو صاف کر کے لو بھائی، زبان سے تب نہ ہو. اگر ہردہ صاف نہیں، منہ میں رام رام بغل میں چھری، لوگوں کی گلے کاٹتا ہے، خون نچوڑتا ہے، حق مارتا ہے بیواؤں کے یتیموں کے، یا چالاکی سے کہو، پالیسی سے کہو، بڑی ہوشیاری سے کہو، دوسروں کو پتہ بھی نہیں لگتا لوگوں کو کیا اہم نہیں آتا. بھائی ایسی میلے چڑی کیسے نکل سکتی؟ ہم لوگوں کو عام احساس نہیں. کوئی بھی کہتا ہوں میں تو بالکل ٹھیک تھا، مجھے تو کوئی کمزوری نہیں. اگر سیلف انٹروسپیکشن سے کچھ دن کام لیں بڑا माइनोरिटी वो कसौटी सत्संग की रहे, महात्माओं की बानी रहे, उन पर परखता रहे तो हर एक दिन में सैकड़ों शायद कभी नजर आएगी कमजोरी। जिसको अपनी आप की तरफ नजर आने लगी उसके निकलने का सामान हो जाएगा। जो भी ये सभी जब मैं गंदगी में बैठा हूं वो कब तक बैठा रहेगा, वो निकल नहीं जाएगा। तो इस मल के धोने के लिए फिर इंसान उपाय करता कुछ किसी तरह ये मल धो जाए। अब कपड़े मैले हो तब धोबी की दुकान पर जाते हैं ना, और किसी की दुकान पर नहीं जाते। जिन्हें धोबी उनके दर दर पर जाएंगे, भाई हमें कपड़ा धो लो। अब ये तो ही कपड़े की मैल, तन की मैल भी पानी से धोई जा सकती। अब मन की मैल कैसे जाए सवाल तो ये। फिर वो मुख्तलिफ महात्माओं के पास धर्मबंधों पर जाता, बड़े घाटों पर फिरता, वहां ये मन की मैल धोई जाए। मगर जहां कहीं भी जाता है कहीं कहता है भाई ऐसा करो, सिर्फ जुबानी जप करते रहो। इंद्र वैसे ही काम कर रहे हैं बाहर फैलने हुए। जहां जाते हैं वो कहते भाई हाथियों की क्रियाएं कर लो। कोई कहते रस्म रिवाज पूजा पाठ तीर्थ यात्रा ये वो पुण्य दान करते रहो, ठीक है ये एलिमेंट्री स्टेप्स है, मगर इससे मन की मैल नहीं जाएगी। सवाल तो ये मन की मैल कैसे जाए। बड़े बड़े घाटों पर इंसान फिरता, मगर कोई ऐसा समर्थ पुरुष नहीं मिलता धोबी जो इसकी मन की मल धोने का उपाय दे बता है। जिन्हें इंद्रों के घाट के साधन है थोड़ी देर के लिए जिसको टिकाव मिलता है, मगर मन की मैल नहीं, इसमें और पड़ती जाती है ना। इंद्रों के घाट की मैलें आती है ना बारह, और इंद्रिय दमन हो सवाल तो इंद्रियों के दमन करने का। जब तक इंद्रिय दमन नहीं होती काम नहीं बन, फिर मन खड़ा हो, फिर बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये उपनिषद कह रहे हैं। अब ये मन क्या चीज है, बड़े बड़े महात्माओं के अड्डों पर जाता है, धोबियों के घाटों पर जाता है, मगर कोई ऐसा सुजान धोबी नहीं मिलता जो इस मन की मल को धोते। दिन दिन काम क्रोध के लिए लव लालच की हवस सुख को फैला रहे हैं, दिनों दिन और बैलेंस पकड़ रहे हैं। विचार से थोड़ी देर के लिए ये खड़ा होता मगर फिर गिर जाता, यहां इंसान हार जाता। जब इंसान हार जाए ना तब काम बनता। एक बच्चा था, एक कमरे पर खड़ा था तो उठना चाहता था, पांव फिसल गया गिर गया, फिर दीवार को पकड़ कर उठना चाहे हाथ फिसल गया फिर गिर गया, फिर किसी कुर्सी को पकड़ कर उठना चाहता था कुर्सी उलट गई फिर मुंह के बल गिर गया, हार गया। हार का दिल की आवाज निकली आए बा, दर्द भरी आवाज थी। माता रसोई में बैठी काम कर रही थी, दूध रखा हुआ था आग पर, वो बाले खा रहा था। हाय माँ की आवाज सुनकर माता से रहा रही भाग दौड़ी, दूध की छोड़ दिया राजे, जाकर बच्चे को उठाया सीने से लगाया रसोई में ले आई, देखा तो दूध सब गिर गया था। बच्चा कहने लगा माता मैं तुम्हें बड़ा प्यारा हूं, तुमने दूध की परवाह नहीं की, मेरी एक बार हाय माँ कहने से तू भागी दौड़ी चली आई। यहां बच्चे तू मुझे बड़ा प्यारा। बच्चे के दिल में ये चित्राई सुनी कि चलो अब माता को बुला दें, क्या मुश्किल है, हाय माँ कहेंगे माता आ जाएगी। तो चार दिन के बाद उन पर दीवार के साथ खड़ा है चुपचाप, कुछ गिरा नहीं कुछ नहीं, कहता हाय माँ हाय माँ हाय माँ हाय बच्चा रहा। आधा घंटा हाय माँ करता रहा, मान आई माता ना आई। समझा कि आज माता ने जरूर बहुत आला चीज बनाई होगी, इसलिए नहीं आई। वृद्ध वृद्ध रिंगते रिंगते पहुंच गया माता के पास, उसके कंधे को पकड़ कर खड़ा हो गया कि माता हाँ बच्चा, आज मैं हाय माँ कितनी बार करता रहा, आधा घंटा करता रहा, तू आई नहीं, क्या करूं। उस दिन मैंने एक बार हाय माँ कहा था, तू भागी दौड़ी चली आई, आज क्यों नहीं आई। कहते बच्चा आज तेरी आवाज में वो दर्द नहीं था। तो जिस इंसान के अंदर खोज और तलाश की तरफ जबरदस्त जागती है, वो बेचारा उपाय करता है, एक जगह जाता है, दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह जाता है, बड़े घाटों पर फिरता, फिर कर जब इसका कोई उपाय नहीं मिलता तो पुकारता, हे माता, हे माँ, हे मालिक, हे प्रभु, दया कर, ये तरस रहा है, तड़प रहा है, इस मैल के धोने के लिए कोई उपाय बन जाए। मगर जितने साधन मिले सब मैलों को न धो सके, कोई तन की मैल को धो गए, समझे, वो तो सामान होता रहा, मगर मन की मल धोने का कोई उपाय नहीं। जब दिली पुकार निकली तो आपको पता है हाथी की चिंगार उस प्रभु को पीछे पहुंची है, कीड़ी की आहट की आवाज फैले जाती है, दिली शोर तरफ से भरी आवाज जो है दुख भरी, वो घट में बैठा सुन रहा हो, जिसकी सच्ची तड़प हो, बेअख्तियार मालिक फिर सामान करता है उसके दिलाने का। और वो क्या है, किसी मिले हुए को मिला देता, डायरेक्ट करता है, जाओ भाई लाइए। फिर वो क्या करता है, या खुद पहुंचता है, ये उसको अपने साथ मिलाने का कोई बहाना बना लेता। मैंने हजूर के वो कदे से कई ऐसी इवेंट आप भी देख रहे हैं। एक बार अमृतसर हजूर बैठे थे तो को वक्ता में भी बैठा था, इसमें एक सिख भाई आ गए, तो मैंने कहा भाई साहब आप कहां से आए, कहते यहीं से, वो कैसे है, कहते आज मुझे बुलाने गए थे कि तुम वहां आ जाओ, मैं पुराने मुकाम पर हूं। देखो जो सम्राट पुष्पन में कई ताकतें काम करती है, डायरेक्शन होती रहती है, तो उसका सामान बन जाता, फिर वो आगे उसके मन के धोने का सामान करता, उसको उपदेश करता कि मन की मल कैसे जा सकती है। ये सवाल जो कुछ आपके सामने रखा गया है, ये किसी खास समाज, गांव, वर्ग, मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता है, ये एज ए मैन प्रॉब्लम है, हर एक मुतलाशी को पेश आती है। जो भी उसे जानना चाहता है पहले वो अपने आप को जाने, बाहर की जो शॉर्टकमिंग्स है उसको दूर करे, नेक पाक और सदाचारी बने, और उसके बाद बनने पर सेल्फ एनालिसिस करे, जो इन्हों के भोगों में लंपट है, नीम पाक पितर नहीं, वो इसके आधार कैसे हो सकता, तो पहले नेक पाक नीम पैदा करना, इसके बनाकर फिर किसी अनबड़ी पुरुष के चरणों में बैठेगा, इसको सेल्फ एनालिसिस खाए जाने में, जो आत्मा है मंदिरों के अधीन होकर जिस्म का रूप बना बैठा है, इसको छोड़, ऊपर आ, ट्रांसेंड कर, ये ट्रांसेशन कैसे हो सकती है, इसका उपदेश, मन की मैले कैसे दूर हो सकती है, इसका जिक्र उनके उपदेशों में मिलता है। इस वक्त आपके सामने दो शब्द छोटे छोटे रखे जाएंगे, एक कबीर साहब का और एक गुरु राशि साहब का, गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं।
सोच समझ अभिमानी चादर भई है पुरानी,
बात यह है कि ऐ अभिमानी पुरुष तू किस लोक में जा रहा है, होश में आ, तू कर क्या रहा, तेरी आत्मा की चंद्रिया कहो चंद्रिया कहो ये जिस्म कहो ये तो मैली हो चुकी, पुरानी हो चुकी और मैली हो चुकी। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता ही है ये तो बूढ़ा ही होता है ना, पुराना ही होता है। अरे वे तुम किस अभिमान, ये तो जिसम छोड़ने का वक्त आ गया, आप तो नजदीक आ रहा है, हर दिन हर घंटा हर मिनट आपको उस ग्रेट फाइनल चेंज जिसको लफ्स मौत से अदा किया जाता है वो नजदीक आ रहा है। ये जिसम मशीनरी है इस्तेमाल होकर खराब हो रही है, वेयर आउट हो रही है। अरे यार अभिमानी पुरुष तू किस नशे में जा रहा है, होश में आ, हु यू आर व्हाट यू आर, तुम कौन हो, तुम्हारा संबंध जिस्म से क्या है, तुम्हारा संबंध दुनिया से क्या है और तुम्हारा संबंध उस परमात्मा से क्या है। इस इनर डिवाइन लिंक को जान और उसके मुताबिक जीवन बना। जागता पुरुष उन लोगों को उपदेश दे रहा है जो इस अभिमान में जा रहे हैं। वो कहते हैं मैं बड़ा तनुमंद हूं, बहादुर हूं, ताकतवर हूं, जिस्मानी बाहुबल रखता हूं। अरे भाई ये बाहुबल की क्या कीमत है, नेपोलियन बोनापार्ट थे, उसके नाम से यूरोप खड़ा था किसी जमाने में। जब वो उसका अंत समय आता है तो कहते हैं तो खून के एक दस्त आया था, मोशन आया, इतना लाचार हो गया कि आंख नहीं खोल सकता। तो कहने लगा मैं वो नेपोलियन हूं जिससे नाम सुनकर यूरोप कांपता था, आज अगर मैं अपनी आंख खोलना चाहता हूं तो लाचार हूं खोल नहीं सकता। तो बाल बल के क्या इस बार है भाई, जो बड़े बड़े अकलमंद हैं, बुद्धि का बल रखने वाले हैं, वो भी एक सनस्ट्रोक हो जाए, एक अटैक हो जाए, सब पढ़ा लिखा भूल जाता है। इसके क्या एक बार है, इंसान पागल हो जाता पढ़ा लिखा भूल जाता, कोई ठिकाने भी नहीं, तो इसका भी कोई एक बार। मगर ये जिस्म के बल बाहुबल में तनुमंद मेरे जैसा कौन है, मैं जोबनवंत हूं, मैं बहादुर हूं, मेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है। अरे भाई ये जिस्म में ये जो कुछ है या बुद्धि का बल जो आप में बड़े आलम फाजिल हो, ये किसके आधार पर चल रहा, आत्मा के आधार पर, और तुम आत्मा हो उसके मुतल्लक, जिसके बल पर ये चल रहे हो उसके मुतल्लक तुम कुछ नहीं जान रहे, और जिसके आधार पर ये जिस्म और बुद्धि दोनों चल रहे हैं इसके मुताबिक तुमने बड़ी तरक्की कर ली है, ग्रहों की हाउस होल्ड लिहाज से, सामाजिक लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से, मगर अपने आप के मुताबिक जिसके हाथ से ये सब कुछ चल रहा है उसके मुताबिक तो यू नो लिटल आर नथिंग, तुम थोड़ा या बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ना के बराबर जानते हो। क्या जानते हो, किसी महात्मा की वाणी थोड़ी पढ़ ली बात, या कहीं धर्म स्थान में जाकर मथा टेका, तुम्हारे आम लोगों की बात यही कुछ है। और ये भी किसी को अगर जाकर पूछो ना भाई तुम क्यों पास रोड करते हो, क्यों धर्म स्थान में जाते, इसलिए हमारे बच्चे राजी रहे, मेरी सेहत अच्छी रहे, मेरी रोजी बनी रहे, दुनिया के लिए प्रभु को याद भी किया तो दुनिया के खातिर, अगर दुनिया न मिले तो प्रभु का सौ तो गाली दुनिया के लोग निकालते, तो क्या छुपा हुआ ना। मजबूत थे, उसको एक बार कहा गया कि खुदा मजनू खुदा तुमको मिलना चाहता है, तो कहने लगा अगर वो मिलना चाहता है तो लैला की शक्ल बनकर आए, خدا کو بھی وہ ملنا نہیں چاہتا ہے. اگر لیلا کی صورت میں آئے تو ملنا چاہتا ہے. ہم بھی تو خدا کو اسی لیے یاد کر رہے ہیں نا کہ اگر دنیا ہماری بنی رہے, اسی لیے زیادہ تر کتنے لوگ ہیں جو سچ میں جو مالک کے لیے تڑپ رہے ہیں, بہت کم لوگ ملے. لاکھوں میں کوئی ہے نہیں, کوٹن میں کوئی ایک. تیرا سیوک ہی کرنا ہو سگلے بہاری سبھی بڑھانوں پیٹ کے دندا. یہ دنیا کی حالت ہے جس میں یہ دنیا جا رہی ہے. کہتے آیا مہمانی پوش, تو کس نشے میں جا رہا ہے؟ یہ پانچ چھ فٹ کا پتلا جو تم یہ پھرتا ہے, یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں. اینی مومنٹ کسی وقت یہ کٹ آف ہو سکتا, لٹل ایکسیڈنٹ میں موت ہو سکتی, پاؤں پھسل جائے تو مر جاتا. اور کوئی تاریخ مقرر نہیں اس کے ختم ہونے کی. تو ابھیمان کس بات پر کر, تو سوچ سمجھ ابھیمانی. یہ چادر بہی ہے پرانی, دنوں دن تو یہ ویئر آؤٹ ہو رہی ہے نا. آخر مشین ٹوٹ ہی جائے گی, کب تک چلے گی اس کی لائف؟ تھوڑی وہ تو خاص فکس لائف ہی ہوتی ہے نا. جتنا اس کو سنبھال کر رکھو گے کام بنے گا. پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جسم کی پشتی برہمچر سے ہے. غور سے سنیے, اس پنڈ کی پشتی برہمچر کے قائم کرنے سے. برہمچر کی ہم نے رکشا نہیں کی, قدم قدم پر تیز ہو. نتیجہ کیا؟ حساب دانوں نے حساب لگایا ہے کہ چالیس قطرے گھی کا ایک خون کا قطرہ بنتا, چالیس قطرے خون کے ایک سیمن کا قطرہ بنتا. بتاؤ کتنی ویلیوبل چیز, اور ہم کس بے دردی سے اس کو گوا رہے ہیں. نتیجہ کیا؟ شادی ہوئی نہیں, بھوگوں کی مشین سمجھ رکھا ہے اس کو. نتیجہ کیا؟ سال دو سے لگ کبڑا ہے, کہیں درد ہے, کہیں کچھ ہے, دوائی ہاتھ میں. آپ بھی بیمار, استری بھی بیمار, بچے بھی بیمار, ہائے ہائے کر رہے ہیں. گزارا ہوتا نہیں, آگے ہی اور انوگتی میں چلے. اگر برہمچر کی رکشا ہو, جیون نئی پاک ہو, سداچاری ہو, انسان عشق کوئی بری عمر تک عشق اس سے آ سکتا ہے. وہ کام کر سکتا ہے بری عمر میں جو جوانوں جوانی کی عمر میں کر سکتا. تو اس لوگ میں انسان گیا ہوا, انسان کتنے دن کا کھیل رہ جاتا ہے؟ کچھ نہیں. آخر پشت بھی رہے, آخر جسم کا کھیل تو آتما سے ہے نا. پکچر وسے سہری پکچر ساتھی نار, جہاں ساتھی اٹھی چلے آیا سانس ہے نا خاکو رہا. جتنے ہی جسم کا ساتھی اس کے ساتھ بچ رہا ہے, تب تک اس جسم کی شوبھا ہے. جب اس جسم کا ساتھی ان ڈویلر آف دی ہاؤس, مکان کا مکین, ہماری آتما, ہم اس سے جدا ہوتے ہیں, اس کو کون پوچھتا ہے؟ آدھ گھڑی کو دہرا تک کرتے تھے اس نے کہا, کاڈو کاڈو ہوئی بھائی, جلدی کرو دیر ہو رہی, ہم نے اور کام بھی کرنے. یہ نہیں پتا کہ ارے بھائی اس کا انتم ہے. یہ بڑا ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے تمہارے سامنے. ارے بھائی تو نے بھی جسم کو چھوڑنا, کیا ہم اس جسم کی چھوڑنے کی سائنس کو عمل میں لا چکے ہیں, اس کے ماہر بن چکے ہیں؟ پھر تو موت کو کوئی خوف نہیں. اگر نہیں جانا تو لاہور کا واقعہ ہے. ایک بار ساتھ ایک گاؤں تھا, اس میں ایک بھائی کا لڑکا جوان گزر گیا. اسے شمشان بھون میں لے گئے, بہت ساری جینٹری آئی تھی. لڑکے کو مردے کو نیچے ڈال دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, پھر دیکھا تیار کر کے شمشان, پھر اس کو وہاں پر اوپر لٹایا جاتا ہے اور جلایا جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگے, میں بھی وہاں تھا, کہ تم اس وقت کچھ اپدیش دیجیے گا. میں نے کہا بھائی اپدیش کا مضمون آپ کے سامنے پڑا, یہ تمہارے جیسا جسم رکھتا تھا, اب اس کے چلانے والا نکل چکا ہے اور تم میں ہے. ایک دن تمہارا بھی آئے گا, इस जिस्म से तुम निकल जाओगे तुम्हारे जिस्म का यही असर होगा। दस दो आठ एंड देन टू दस रिटर्न, तुम मिट्टी हो, तुम्हारी जिस्म मिट्टी हर मिट्टी में मिला दिए जाओगे। क्या तुम इस तब्दीली के लिए तैयार हो? आर यू प्रिपेयर फॉर दिस चेंज? अगर हो तब तो ठीक, नहीं हो तो इसके लिए हल करो। ये कौन सी चीज है जो निकल जा रही है? तो किसी अभिमान में इंसान जा रहा है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, अरे भाई आया पुष्ट किस अभिमानी पुष्ट बना पड़ा, किस अभिमान में जा रहा है? आखिर ये सारे नशे खत्म हो जाने जिस्म के साथ है। जब तेरी आत्मा से जुदा होगी क्या रह जाएगा? पैदा होती हुई जिस्म सबसे पहली चीज है जो हमारे साथ आती है, पहला साथी जाती हुई हमारे साथ नहीं जाता। तो फिर उसके स्वभाव से जितने और ताल्लुकात बने हैं, बाल बच्चे रुपया पैसा ज्यादा दे, वो हमारे साथ कैसे जाएंगे? इसी को सही मानों में देखना सच यही है, मगर हम नशे में जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या है। कोई इल्म के नशे में जा रहा है, कोई हुकूमत के नशे में चूर है, कोई रुपए के नशे में गलतान है। उसको आप दूसरों को, दूसरे भी इंसान नजर आते मगर अपने आप की तरफ तो बिल्कुल तवज्जो जाती है। होश कब आती है? कहे कबीर, सही दर जागा जब यम का दर मूड बना, उस वक्त होश आती है। जिसम से रूह निकलने लगती है, घबराता गिड़गड़ाता निकलना आया नहीं, किन्ना पिंचिंग दुख। श्रीमद् भागवत में जिक्र आया है कि इंसान को अंतर जब आत्मा रूप जिस्म से जुड़ा होती है, इतनी तकलीफ होती है जितना 1000 बिच्छू इकट्ठा चल पाए। एक बिच्छू लग जाए पीछे करवल पर कितने दुखदायी होता, 1000 इकट्ठा लग जाए तो आपने देखे आप कोई किस्म क्या होता है? गिरता पड़ता है, टांगे मारता है, बाजू मारता है, कभी मुंह टेढ़ा होता है, कभी सीधा होता है। अगर यही भी डॉल की साइंस पहले सीख जाए मौत तो क्या हो। कुरान शरीफ में लिखा है कि रूह का जिस्म से जुदा होते वो कितनी तकलीफ होती है जितने पहाड़े के रस्ते कांटों की झाड़ी जान दुकान रूह के रस्ते फैलती है। अनुमान दिया है तो गुरबानी कहती है जिन निवानी कदी हड्डा कुकड़ का इफेक्ट है जो हमारे सामने। मर गया बेमान नशे में जा रहे, अरे भाई उस दिन का भी क्या उपाय तुमने किया है? जब तुमको जिस्म को छोड़ना पड़ेगा, क्या तुम जिस्म को छोड़ना सीख गए? सवाल मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल कर गए, कर लिया तो तुम मुबारक हो, नहीं तो जन्म बर्बाद चले। पैदा होते ही तो रोते ही थे, जीते भी रोते हैं, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, एंगल ऑफ विजन बदला नहीं। हम जिस्म के एंगल से सारी दुनिया को देख रहे हैं। अगर हम आत्मा सेल्फ एनालिसिस करके आत्मानुभव कर लेते तो आत्मा की नजर से दुनिया को देखते, दुनिया किसी और रंग में नजर आती, सही मानों में नजर आने लगे। जिसे बदल रहा है जगत भी बदल रहा है, दोनों एक ही रफ्तार से मैटर बदल रहा है। हम जिस्म के सवार हैं क्योंकि दोनों चीजें एक ही रफ्तार से बने, इसलिए दोनों हमको खड़ी मारती है। अगर हम फिर से बाहर निकलना सीख जाएं, दोनों चीजें बदलती महसूस होंगी। और उन महात्माओं के कलाम जो हमने सुने हैं, एक जग सूर्य का थावलार, ये जिंदगी चंद रोजा है, जैसे और शुभ पड़ती है नहीं रहती सूर्य चढ़ने पर, ऐसे ऐसे कलामों को हम समझ सकेंगे उनका मतलब क्या। हम कहते नहीं, जब सत्य है हम भी सत्य है, मौत क्या है? कईयों को कहो ना मरना है भाई, कह क्या मौत आई मर जाएंगे। अरे भाई कैसे मरेंगे, सवाल तो ये है। तो गुरुदास जी साहब कहते क्या जाना क्यों मरेंगे, कैसा मरना हो। आगे फरमाते जे तू मनोनवित रह सलम, जो उस प्रभु की याद रहे, अपने आप की होश रहे, इस मिट्टी को हल कर दिया जिंदगी में, जिससे उसकी मौत आसान है। कबीर साहब कहते जिस मरने थे जग मरे मेरे मन आनंद, मरने ही थे पाइये पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग त्रास रहा, डर रहा है, भयभीत हो रहा, कहते उसका नाम सुनकर मुझे खुशी की हद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जिस्म को छोड़कर इंसान परमात्मा में हमेशा के लिए मिल रहता, जो उसकी आत्मा इस मनुष्य जीवन में परमात्मा को पा गई, जीते जी मरकर वो कहां जाए, परमात्मा ही जाए, हमेशा के लिए कौन है। तो कबीर साहब कहते अरे भाई तू किसी अब आया भगवानी पोष, तू किस जोर में नशे में जा रहा है। तेरा ये जो चोला तू लिए फिरता है ये पुराना हो रहा है, वेयर आउट हो रहा है, ये एक दिन अब टूटने वाला, तो होश में आ। यही महात्मा सब कहते, वेद भगवान क्या कहता, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। अरे भाई जागो, होश में आ, इस खाब खरगोश में तुम सो रहे हो, चलो और उस वक्त तक न ठहरो जब तक मंजिल मकसूद को न पालो। हम रास्ते के मुसाफर हैं, रास्ते को मुसाफर को सोना ठीक नहीं। अपने हाँ मोबाइल में सो रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं। तो ये कभी साफ फरमा रहे हैं आगे।
कुछ समझ अभिमानी चादर भई है पुरानी, टुकड़े टुकड़े जोड़ जुगत सो सी के अंग लिपटानी।
बड़ा एनाटॉमी का काम करने लगे और कहते हैं भाई तू जिस्म की नजर मारो, यहां टुकड़े टुकड़े जोड़कर, टुकड़ों को जोड़कर और फिर उनको सीकर तुम्हारे ऊपर चढ़ा दी। ये जो चित्र है जिस्म जो है टुकड़ों टुकड़ों का मिला हुआ, एक एक हड्डी कई हड्डी है, एक एक में कई हड्डी है, सबको बड़ी खुशसलूकी से जोड़कर चमड़े का ऊपर खोल चढ़ा दिया और तुमको बीच में बिठा दिया। ये मशीनरी दिनों दिन खराब हो रही, इसकी तरफ से आखिरी मशीनरी छोड़नी पड़ेगी। बड़ी बेशकीमत मशीनरी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ऐसे वो काम कर सकते हो जिससे तुम्हारा हमेशा का आना जाना खत्म हो सकता है, तुम हमेशा के सुख को पा सकते हो। अपनी तरफ नजर मानो, ये जीव तो तुम्हारा ऊपर खोल है जो तुम पर चढ़ाया गया, टुकड़े टुकड़े जोड़कर उस प्रभु ने बड़ी खूबसूरती से सीकर ऊपर खोल चढ़ाकर तुमको भी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया, उड़ा दिए।
कर डारी मैली पापन सो
को तू जिसने मैलाई कर दी, एक तो मशीनरी वेयर आउट हो रही है खत, दूसरे को और मल मल पर मल चढ़ा दिया। किस चीज की? लब लालसों की, विषय बकारों की, भोगों रसों की। कहते इसको बड़ी बुरी तरह तूने मैला कर रखा, और कपड़ा मैला हो माफ करना। और तो जिसको ये पता लगे जो नशे में हो उसको खाए, कपड़ा मैला हो खा कुत्ते उसका मुंह चाट रहे तो भी उसको कोई पता नहीं, जो होश में आया तो देखते कपड़ा मैला भी इसको धो देना चाहिए, वो इसके धोने का कोई उपाय करता। कहते अरे भाई जिस्म रूपी चादर को कहो तूने जोड़ी हुई है, ये टुकड़े टुकड़ों को बनाकर जोड़कर सीकर खोल चढ़ाकर तुम इसको ओढ़ रहे हो, ये पुरानी हो रही है और साथ ही साथ तुमने इसको इतना मैला कर दिया है کہ آپ دیکھنے کو بھی جی نہیں جانا کس چیز کی میل چڑھائی ہے کہ کہیں لب لالچ کی دشے بھوگوں کی کام کروز کی سمکار کی یہ میلیں اس پر چل رہی ہیں. تو جہاں محل ہو وہاں بیماریوں کا گھر بنے گا کہ نہیں, اس میں بدبو بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. برے خیالوں کا اثر ہر ایک انسان کے اندر ہے. ایک برا خیال پیدا ہو نا, ہر ایک برے خیال کا اپنا رنگ بھی ہے اور اپنی بو بھی ہے. یاد رکھو جتنے آمسک خیال ہیں ان کا رنگ سیاہی مائے, جتنے کامی خیال ہیں ان کا رنگ سیاہی مائل اور لیورڈ ریڈ لال. یہ رنگوں کی کیا چیز, جو پریم بھرے جیون رکھتے ہیں ان کا رنگ میں ایک پاک پتو ہو جائے, یہ ملے صاف ہو جائے گی, یہ خوشبو پیدا ہو جائے گی. جو نیک پرش ہے, روحانی پرش ہے, ان کے جسم کی بو لو جیسے چمیلی کی بیری بیری خوشبو. کوئی ٹائلٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو فرما رہے ہیں یہی بات کہ ہم نے اس کو میلا کر رکھا, اس میں بدبوئیں بھر گئی. جہاں بدبوئیں اور غلالیں بھر گئی وہاں بیماریوں کے گھر ہی بنے گا نا. یہ جن دردوں کا کام پیدا ہوتا ہے ہر ایک انسان کے اندر, یہ ان لوگوں جن میں کرودھ اور ایشیا غصہ خون کے دوران میں پائزن پیدا کرتے, دردے پیدا کر دیتا. ہمارے خیال ہی بیماری کو پیدا کرنے والا. سرو دو کو اگر صرف ہم روحانی بن جائیں, ہماری ہر چیز بہتر ہونے لگتی ہے, ہر ایک کام میں برکت پڑتی ہے. یارے بھائی, اس چادر کو میلی ہو رہی تھی, پرانی ہو رہی تھی, وہ تو نے اتنی میلی کر رہی ہے کہ اب دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. اور اس پر کیسی میلیں چل رہی ہیں یہ بتائیے. کہیں کام کی, کہیں کروھ کی, کہیں ایشیا دوائش, نندا چگلی, دھڑے بندی, کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ. اب یہ میل صاف کیسے ہو, سوال تو یہ آگے فرماتے ہیں.
لگو جان کے صابن نہ دھوئی بھل پانی
مل پانی. کہتے ہیں جان کے صابن سے یہ دھوئی جا سکتی تھی, سمجھے, اور ستسنگ کے پانی سے مل مل کر یہ میل نکل سکتی تھی. نہ ستسنگ ملا نہ گیان ملا. گیان کس کو کہتے ہیں؟ گیان کس کو کہتے ہیں؟ گیان علم کے پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں. علم پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں, علم نام ہے اس طاقت کا جو ہمارے پڑھنے پڑھانے میں آدھار دے رہا. علم العلم کا نام گیان ہے, علم کا نام گیان نہیں. دنیا اس بھول میں جا رہی ہے. گرو صاحبوں نے اس کی تعریف کی ہے, گیان دھیان دھن جانیے اکت کہاوے تو. وہ دھنی, وہ پرنو کی دھنی جو ہو رہی ہے, ادگیت ہو رہا ہے, شدھی ہو رہی ہے, اس کا نام گیان ہے. اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا, یہ صابن کا لگانا, وہ کہاں پر ملتا ہے؟ وہ ہندو کی گھاس کے اوپر. اس کو نام کر کے کہا ادرشٹ گوچر نام ہو پا رہا. کہتے نہ تو گیان کا صابن ملا جس سے مل دھوئی جاتی, اور نہ ستسنگ کا پانی ملا جس سے مل مل کر دھوتے. ہمیں ہوش کہاں آتی ہے؟ ستسنگ کے پانی میں, ستسنگ میں. یعنی دونوں ہی چیزیں نہ ملی, من کی مل جائے کیسے؟
صابن نہ دھوئی مل پانی سمر اوڑتے دیتی بھلی بری نہیں جان.
है सारी उम्र इस जगत को पहने हुए हो गए, इसमें कितनी बुराई है, क्या अच्छाई है, कितनी मैले, इसका भी हमें पता नहीं। हमें लोभ में जा रहे हैं, अभिमान में जा रहे हैं, सुपरफिशियल लाइफ बतीत कर रहे हैं। हमें यह नहीं पता हमें क्या खामियत है। अब अपने आप की तरफ तवज्जो आए तो इन गलतियों का पता लगे, मैलों को पता लगे। अपनी आप की तरफ कभी तवज्जो नहीं की। दूसरे को तो मले नजर आती है, माफ करना, हमको अपनी मले नहीं नजर आ रही। हमारे जो फरमाते थे कि हम में जो कमजोरियां हैं, पाप हैं, उनको या तो कोई सच्चा मित्र जो दूसरा देखता वो कहेगा, या दुश्मन कहेंगे कि उनकी नजर हमेशा तुम्हारी तरफ रहती, तुम क्या कर रहे हो। अपने आप की नजर अपने आप की तरफ कभी नहीं आई। कहते इसी जोम में जा रही है दुनिया सारी, कभी सब है। कितनी मैल भर गई है अंतर, इसका भी पता नहीं। मगर अगर ना भी पता हो, जैसे ही एटमॉस्फेयर गिरदा गिरदा होगा, उसका बुरा असर होगा कि नहीं, कहने की बात। बीमारी पैदा होगी, एक आदमी विलासत में पड़ा पड़ा है, उसकी बीमारी बन जाएगी कि नहीं, चाहे वो बेहोशी में क्यों ना पड़ा हो।
कमान जान किए अपने, ये है चीज वीरानी।
जैसे मैं इस बात को परपक करके जानो, सब शंकों से रहित होकर, बियॉन्ड डाउट, ये मुसलमान हुआ है क्या कि ये जो जिस्म हम पहने हुए है ना चंदर दिए, ये अपनी चीज नहीं, ये पराई आखिर छोड़नी। पराई चीज कब तक बरतोगे, जितने दिन के लिए आपको मिली है बरतने बात। ये एक बड़ी आला चीज है। आम लोग कई फकीर इसको इस तरह से बयान करते हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है और बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरी वक्त है जो तुमको मिला है, इसमें तुम वो काम कर सकते हो जो किसी यूनि में नहीं कर सकते। और वो क्या है कि तुम अपनी आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके अपने आप को जान सकते हो और प्रभु को पहचान सकते हो। ये काम किसी और यूनि में नहीं कर सकते। मिसाल दिया करते हैं कि एक फकीर को रहम आ गया किसी गरीब की गरीबी पर और उसको एक पारस का टुकड़ा दे दिया। कहा भाई जितना सोना बना सकते हो बना लो, तुम्हारी गरीबी निकल जाए। वो बाजार में यह पता किया कि लोहा किस भाव बिकता, पता लगा ये 3 रुपए मन था, 5 रुपए मन हो गया, चल महंगा हो गया लोहा, ठहर जाओ। महीने के लिए वो दे गया था, फिर हफ्ते के बाद गया, चले जाओ तो 10 रुपए बंद हो गया, क्या भाई महंगा हो गया तो। फिर गए और हफ्ते 10 दिन के बाद गए, फिर पता नहीं कि 12 रुपए हो गया। इसी फिक्र में ये लोहा सस्ता हो तो खरीदे, ये पता नहीं कि पारिश को लगेगा वो सारे सोना बन जाएंगे। मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं, नतीजा क्या हो गया, महीना खत्म हो गया, लेने वाला पारस आ गया, वो गरीब का गरीब ही रहा। क्या बोलो जी, इन बड़े भागों से मिला, इसमें हम ये काम कर सकते हैं, आत्मानुभव और परमात्मानुभव का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड नॉलेज को गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मगर ये क्या सोच ही रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, अभी नहीं, ये ज्यादा जरूरी काम है, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। जिसम और बुद्धि के मुतलक तो सारे काम नहायत जरूरी हो गए, अपने आप के मुतलक गैर जरूरी महसूस हो रहा, पता ही नहीं कि हम कौन है, हमारा क्या हशर हो रहा है। हमको ये भी पता है हमारी क्या कमजोरी है, जिसम खत्म हो रहा है कि नहीं, इसका भी इल्म नहीं। हम ये से हम हमेशा ही रहे, किसी को मौत याद है कोई नहीं। जिन्हें चले जाने सो क्यों करें मिठा, कर दिया, महसूस कर दिया एट होम, ये बात उनके दिल की मैंने जाना है। फिर इतने सारे झूठ फरेब ریاکاری کپٹ کی کیوں کرے گا؟ آج موت یاد ہو جائے سب نیک بات بن جائے، موت سے بھول چکی ہے. حالانکہ یہ ایک مسلمان امر ہے، نو ایکسپشن ٹو دی روم. رانا راؤ سکو رہے رنگ نتنگ فقیر، واری آپ کو اپنی کوئی نفع دے گئی، نہ راجا رہے نہ رعیت رہی، نہ دنیا دار رہے اور نہ ہی ولی اوتار رہے. بڑے بڑے لوگ آئے جسم لیا چھوڑ گئے، ارے بھائی ہم نے بھی چھوڑ دیا. تو یہ کہتے یہ پرپت کر کے جانا، یہ جسم تمہارا نہیں، پرایا چھوڑنا پڑے گا. گرو نانک صاحب جتی صاحب میں کیا کہتے، کال کواری کایا، اس کایا کے کال کے ساتھ، کواری کایا کا کال کے ساتھ منگیوا ہو چکا ہے. اور ون لے جاسی پرنال لے جائے گئے، چھوڑنا پڑے. کہتے یہ پرپت کر کے جانو، یہ جسم تمہارا پرایا اپنا نہیں. کچھ دنوں کے لیے آپ کو یہ ایک مشینری ملی ہے کام بنانے کو، اس سے فائدہ اٹھا لو. اگر بیشے بکاروں میں لمپٹ کر کے اس میں جیون بتیت کر لیا، جنم برباد کر لیا. اگر اس کے ہوتے ہوئے جسمانی فرائض بھی، بدھی کے بھی، باہری سماجی کی پورے کرتے، ساتھ ہی ساتھ تم نے اپنے آپ کی طرف ہی توجہ دے دی اور اس کے متعلق ہی کام کر دیا، تینوں پہلوؤں سے تم مکمل ہو گئے، تمہارا جیون سفل ہو گیا. سب محت پر یہی کہتے ہیں جی.
کہتے کبیر تھا، کہتے کبیر دھر راکھو جتن سے، میر ہاتھ نہیں آنے.
یہ جسم دھر ہے، مٹی ہے، نیہر ہے، کہتے تو یتن کر کے بھائی سنبھال کر رکھو، اس سے کام لو. ایک بار ہاتھ سے یہ نکل گئی پھر تمہارے ہاتھ میں، پھر دیکھو نا پوڑی چھڑکی پھر ہاتھ نہ ہوا ہے لائیے نا ہوا. ایک بار تو نکل گئی نا، پھر کم ملے پھر تم یہ کام کر سکتے. یہ دیکھے بھائی اعلیٰ سے اعلیٰ موقع آپ کو، یہ تو سما ملا اتی سندر، اس سے فائدہ اٹھا رہا. اور وہ کیا ہے کہ اس میں جو ملے لگی ہیں جنموں جنموں کی یاب لگ رہی ہیں، ان کو میلے کو دھو لو گیان کے صابن اور ستسنگ کے پانی. اب گیان کے متعلق میں نے عرض کیا، ستسنگ کس کو کہتے ہیں؟ ستسنگ کا پانی کس کو کہتے ہیں؟ ستسنگ عام دنیا یہ سمجھتی ہے جہاں 10-20 ہزار یا 500 یا 1000 آدمی بیٹھ گئے، وہاں کوئی اتحاد پڑھ دیے یا کوئی اور ذکر اذکار ہو گیا، اس کا نام ہے ستسنگ. مگر سنتوں نے اس کو ستسنگ نہیں مانا. ستسنگوں نے ستسنگ کی تعریف سنتوں نے اس طرح کی ہے، جائے ستگور تے ستسنگت بڑھائی. جہاں پر کوئی ست سروپ ہستی ہے اس کی صحبت کا نام ستسنگ ہے، باقیوں کا نہیں. ایک جاگتا پرش ہو، ہزار آدمی سو رہے ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جاگتے پرش کی سنگت، وہ سب کو جگا سکتا. ساری دنیا موہ مایا میں سو رہی ہے، موہ مایا سب جگسوانا. اگر ایک جاگتا پوش ہو وہ موہ مایا سے جو اتیت ہو کر سیلف انالیسس کر کے اپنے آپ کو جان گیا، پربھو کو پا گیا، موت کی سوکاج بن گیا، تو وہ سب کو جو اس کی سنگت میں آئے سب کو اس سے نکال کر اپنے آپ کا انبھو کا تجربہ کرا سکتا. عالم آپ کو علم دے سکتا، وکیل آپ کو وکیل بنا سکتا ہے، ڈاکٹر آپ کو جسم کا علم دے سکتا ہے، مگر کوئی آتم انبھوی پرش ہی آپ کو آتم انبھو کا تجربہ کرائے گا، باقی کوئی نہیں کرائے گا. تو کہتے ستسنگ میں جاؤ، وہاں جاگتے پرش کے کلام سنو گے، ادھورے پرشوں کی صحبت نہ کرو، پورے پرشوں کی صحبت کرو، وہاں ہر ایک چیز کی کسوٹی ملے گی. کیسے اینالائز کر سکتے، کیسے ملوں کو دور کر سکتے، تو یہ تھا کبیر صاحب کا شبد جو آپ کے سامنے رکھا گیا. اس وقت ایک اور شبد گرو امر داس صاحب کا چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے, غور سے بچاریے انہوں نے کیا فرمایا.
من میلے سب کچھ میلا
سدگر دیا مو کوئے
एको नाम, एक ही नाम को जपो। नाम किसको कहते हैं? थोड़े लफ्जों में परमात्मा नाम है, शब्द है, अनाद है। वो इंटू बीइंग आया, नाम हुआ, शब्द हुआ, नाद हुआ। उस वो नाम पावर जो है ना, वो सब खंडों ब्रह्मंडों के बनाने वाले शब्द पावर कहो, नाद कहो। नाद से चौना बहुत बने हैं, शब्द से धरती आकाश बना है, नाम सब खंडों ब्रह्मंडों के धारने वाला। मुसलमान फकीर से कलमा कहते हैं, कलमे से चौना तबक बने हैं। ईसाई भाई उनको वर्ल्ड कहते हैं, हिंदी बिगिनिंग हुआ थी वर्ल्ड, वर्ल्ड वार विद गॉड, वर्ल्ड वार। तो कहते हैं कि नाम को जपो, नाम के साथ रखो, नाम को ध्यान तुम्हारी बनाओ। इस नाम पावर के अनेकों नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने उसको समझाने बुझाने बोध कराने के लिए पढ़ते हैं। सब नामों के लिए हमारे दिल में किस लिए? कुछ ऐसी जात हक को बयान करने के लिए बनते गए हैं जिसके हम सब पुजारी हैं। कोई उसको राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई कुछ। मैं हर एक नाम के लिए हमारे दिल में, कोई उसको स्वामी कहता है, कोई महादयाल कहता है, कोई अकाया निराला कहता है। बात एक, वो शब्द में जाना है, लय होना है, वो शब्द रूप जो हुआ उसके साथ कॉन्टेक्ट करके वो वापस जाने का जरिया, वे बैक टू गॉड। उसके साथ लगने से मन की बने जाए। जपजी साहब ने इस बात का निर्णय फरमाया है, मिसालें दे देकर समझाया है कि नाम क्या है। हर हर उत्तम नाम है जिन सृजा सबको, जो सारी सृष्टि के सृजने वाला। फिर कहा जब जी साहब ने जेता कीता देता नाम, विणा में नहीं कथा, जिन्ना किया हुआ पसारा है, वो सब नाम का है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर नाम ना हो। नानक नामे के सब की चुअत कंट्रोलिंग पा, पूरे भाग को बड़े पूर्ण भाग जाके तब तुम इसको पावर है। कहां पर इसका लिंक मिलता है? कहते नौ नियम प्रभु का नाम, देखी में इसका भी नाम, नौ निधियों के देने वाला प्रभु का नाम, हर एक किस्म की खुशी देने वाला, नौ किस्म की खुशी की है। देखी में इसका उसका लिंक आपके अंदर, अगर तुम कहां पर है सवाल या अदृष्ट गोचर नाम हमारा अत्र सही में गौचर काम के अंतर में। अब तुम कहां पर है सवाल याद, अदृष्ट गोचर नाम हमारा अत्र का नाम प्यारा। वो बाहर दृष्टि का मजबूर नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा, अगोचर होना पड़ेगा, अंतो इंद्रों के घाट से ऊपर आना पड़ेगा, तब उस नाम को पाओगे। बड़ा भारी मिठास और मस्ती नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। उस नाम में कुमार है, नशा है, सरूर है, आनंद है, वो ज्योति है उसमें। नाम जपत कोट सूर उजारा, उसमें ध्वनि है, ये उसका एक्सप्रेशन में ये दो चीजें हैं। उसको पाकर तुम शब्द और नाम में जा सकते, ये बाहरी शब्द। जहां भी नाम की या कीर्तन की जिक्र किया, राम नाम कीर्तन रतनवत हर साधु उपासन की, रवे नाम में कीर्तन हो रहा है, उसके रत्नों जैसी पूजी हरी ने साधु के पास रखी। जो वचन वो सत सत कर माने, साधु पाठ करी है, जो उसको सत करके मानता कि वो ब्रह्म करके कौन क्या। और जहां भी कीर्तन का जिक्र गुरबानी में आया, वहां आया साधु संघ, हर कीर्तन का साधु की संघ, साधुओं की संगत में नहीं, इनकी भी हर एक महात्मा ने बरता है इनको, मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम, मगर जिस कीर्तन से मुक्ति लिखी है वो साधु की संगत है। राम नाम कीर्तन रत्न वस्त कहा, हर साधु साध हर कीर्तन साध संगत है, फिर कर्मन के कर्म जो अंतर के राह से न वाकफ है वो सिर्फ इसको बाहरी घटा रहे हैं। ये एलिमेंट्री स्टेप है, ये बाहर का कीर्तन आपको बाहर तत्वों में रखेगा जहां से जा रहे हैं, अंतर का कीर्तन हायर है वो आपको लय करेगा। तो इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए, यही नाम से ही मुक्ति लिखी है, जेवर भाग होवे वट भागी तो हर नाम से आए, नाम के ध्याने से मुक्ति। मनुष्य पाना बड़े भागों का काम है, कहते मनुष्य पाकर तुम्हारे बड़े भाग जागे हैं तो और अगर बड़े भाग जागे तो नाम के ध्याने वाले बनो, नाम का ध्याना कुछ और है, अक्षरों का जाप करना कुछ और है, सिमन पहला कदम है, सिमन से ही हम उस नामी को पकड़ सकते। हर सिमन में अनहजुमखा नहीं, उसके साथ लगने से जीव की कल्याण है। कहते ये नाम कहां से ले, गुरु नानक साहब पहली बात से एक बात ये, जहां नाम मिले तो जाओ, ये नाम हमें जाओ जहां से मिलता है। कैसे मिलेगा, फरमाया गुरु प्रसादी कर्म को, जाओ किसी अकबरी पुरुष के पास उसकी कृपा से तुम इस कर्म को कुमार, बड़ी साफ हुई है तुम्हारे अंतर, नाम से ही कल्याण है। तो बड़े प्यार से कहते हैं मन मेरे तू जब एको नाम, जपजी साहब ने क्या मुशाले देकर समझाया, इस नाम पावर के साथ लगने से ही मन की मले दूर होती, पर ये हाथ पैर सुनते पानी धोते उसके हाथ और पांव अगर मिट्टी से भर जाए तो पानी के धोने से साफ हो सकते, भूत पलीसी कपड़ हो दे साबुन नहीं हो धो, पिशाब और गंदगी से अगर कपड़ा भर जाए तो साबुन से दूर हो सकता है, सफाई हो सकती, पर ये मत पापा के सम हो तो पहनावे के रंग, अगर मती पापों से भर जाए तो उसके इलाज के नाम की रंग, नाम को हम भूल कर खाली साक्षियों को पढ़ने पढ़ाने में बाहर मुक्ति ही जो एलिमेंट्री स्टेप से उसी को ही सब कुछ समझ रखा, हालांकि वो मीन तो नियम थे मगर उसी को सब कुछ समझने पर हकीकत से दूर है। कहते हैं मन मेरे तू जब एक को नाम उसके नाम के साथ लगने से तुम्हारी मन की मले दूर हो जाएगी। फिर कहते ये नाम की दौलत कहां से मिली, फरमाते हैं सतगुर दिया वो कोई और निधान, किसी सतगुरु भक्ति रुपये खजाना बो है हम, क्योंकि हम इंद्रियों के घाट पे जिस्म का रूप बने बैठे, सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सके, इससे ऊपर नहीं आ सके, इसलिए दौलत हम में है मगर हम भूखे के भूखे हैं, भीखा भूखा को नहीं सबकी गट्टी लाओ, बिना खोल नहीं जानते सांसे बहेगा, अभी दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गट्टी में लाल एक बड़ा देश की मस्ती बनी पड़ी, क्योंकि जड़ चेतन की ग्रंथि है, हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, हम इसके ऊपर ट्रांसेंड नहीं कर सकते, इसलिए कंगाल हो तो नाम की दौलत घट घट में खत्री ब्राह्मण शूद वै शुद्ध चौ वर्णों को साझा, सारे वर्णों को एक जैसा उपदेश पुरुष जाति के लिए, कल में नाम जपे उन्द्रे सो नानक कट कट मजा कर, ये नाम का जाना सिख का प्रोग्राम जो गुरु रामदास जी साहब ने दिया वो यही दिया, गुर सतगुर का जो सिख खाए पलके उठा नाम से आए, नाम का जहाना ये पहला काम था, कहां तक जाए कहते उदुम करे पलके परवासी स्नान करे अमृत नहाए, उदुम करते पुरुषार्थ से काम ले और अमृतसर में स्नान करे, अमृतसर बाहर का श्री राम गुरु रामदास जी ने शुरू किया और गुरु अर्जुन साहब ने मुकम्मल किया, मैं गुरु अमरदास जी की बाणी में इसका जिक्र आया, सच्चा अमृतसर कायम आई मन पीवे बहाये सुभाई हो, आपके अंदर सच्चा होंगे तो उसको हौजे कौशल मुसलमान फकीरों ने कहा और प्रयागराज हिंदू फकीरों ने बात मुझी। वो ठिकाना है जहां पर रूह जाकर तीनों गलाफों से स्थूल सूक्ष्म काम से अलग थलग होके अपने आप को जानती है और प्रभु के जानने के काबिल। कम अज कम वहां तक रसाई करो और दिवस चढ़े गुरुवाणी दिन चढ़ पर गुरुवाणी का उच्चारण लिखा है, मगर हम नाम का ध्याना भूल गए, सिर्फ वाणी का ही बाजी रह गई। पर वाणी भी सिर्फ माफ कर तोतों की तरह पढ़ छोड़ते हैं, वो भी कहीं कहीं, और वो भी ज्यादातर क्यों पढ़ते हैं कि हमारे बच्चे राजी ने हमारी रोगी खुली रहे, प्रभु के लिए तो कोई कोई पढ़ता है।
सिद्धा के आसन जे सिखे इंद्री वस करे तुम्हारे, मन की आके आसन जे सिखे इंद्री वस करे तुम्हारे, मन की मैल ना उतरे ओ मैं मैल ना जाए।
इससे मालूम होता है कि गुरु अमरदास जी साहब ने शायद कई आसन भी किए हो, कहते अनेकों सिद्धों के आसन भी कर लो, 84 प्रसिद्ध है, कहते वो भी कर लो तो भी उनके करने से भी क्या होता है, इंद्रियों को दमन करके सिद्धों के आसन भी कर लो, कहते तो भी मन की मैल नहीं होती। मन की मैल जब निकलते हैं ना आसन से, फिर वैसे के वैसे कही है भाई मुझे मिले कानपुर में एक साहब मिले, वो जमीन के अंतर 6-7 दिन रहते थे, कुंभ करके हाथी को अपने सीने पर खड़ा करके ताक देते थे कुंभ। मैंने उनसे पूछा तुम्हारे मन की हालत क्या, क्या मन तो वैसे ही ये पैसे कमाने का जरिए तो फैक्ट्री है भाई, जिसम जिस माने करो मन की मैल तो इसकी ख्वाहिशात जो जन्मों जन्मों की भरी पड़ी है उसको धोना है, और आइंदा आने वाले जब तक इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं जाओगे बाहर की मने तो आती नहीं, तो नाम कब मिलता है जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। तो कहते बाहर मुखी साथ रखा है सारी उम्र बदते चले जाओ, मन की मैल नहीं, मन की मैल जाने का क्या उपाय, नाम। भगवान कृष्ण जी के जीवन में जो जिक्र आया है अलंकार के तौर पर है कि उन्होंने त्रै जमुना में छलांग मारी, नीचे 1000 मुंह वाला सांप था, बांसी की धुनी बजाते हुए उसका नथन किया। वो कौन सा सांप है 1000 मुंह वाला, यही मन कर सकते बैठा, वो प्रणव की ध्वनि जो अंतर में हो रही उसके सुनने से ये काबू हो सकता, इसका कोई या ऐसे पशुओं की सोबत जिनका मन काबू है, अनुभव को पाया उनकी सोबत में जिस जिथिया मन रहती है सदगुण जिसका न हो, थोड़ी देर की टिकाऊ उस मंडल में चार्जिंग है, या वो या जिस चीज से चार्जिंग है वो ना वो तेरा मन काबू हो जाता। जब वो रस आवा ये रस नहीं भाव, ये रस ठीक के पड़ जाए, जब ज्यादा रस वाली चीज आदमी कबूल करता, कहते सारी और बाहर मुखी साथ में करते रहो, नाम कुछ आओ।
इस मन को हो संयम को नाही, ऋण सतगुर की शरणा।
मन का केवल काबू करने का सवाय किसी सत्स्वरूप हस्ती की शोभा की और कोई, पहले उसके मंडल का शोध साध संग ठहराई तो मन चेता सूर पाए, साधु की शोभा सुध खड़ी होती है, मन को कुछ ठहराव मिलता। एक ब्रेक वाटर है, ब्रेक वाटर समुद्र में ब्रेक वाटर लंबी दीवार पत्थरों की बनाई जाती है, समुद्र की लहरें आके टकरा कर पीछे आ जाती है, दूसरी तरफ पानी में तुम नहा सकते हो अपनी शक्ल की देख सकते, खाद साधु संघ में ब्रेक वाटर वो बैठा, मन की लहरें उठती नहीं, कई बार मन को ढूंढो मन नहीं मिलता, दुनिया भूल जाती। यह सर साधु संघ नफ्स हरगिज ना कुछ जो जिले पे, ये नफ्स कभी मरता नहीं जब तक इस पर किसी पीर का साया न पड़े। और वो क्या दवा देता, नाम पूजन पाया सोमत और अंतर नाम का रंग मन को खड़ा कर। गुरमुख का वेल साध का संग नाम का रंग, सही प्यारे देव जिना मिलिया तेरा नाम किया। बड़ी साफ गुरु साधु नहीं मिलता है, गुरुमुख नहीं मिलता, गुरुमुख ऐसे सब ही बने बैठे। गुरुमुख वही है जो गुरु के सन्मुख बैठा, जिसको अनुभवी पुरुष की शक्ल ही देखनी नसीब नहीं हुई माफ करना, वो गुरुमुख कभी कहा। और गुरुमुख की बड़ी भारी तारीफ भी की, गुरुमुख कोट और आयता दे नाम ही कड़ी, और तो ये समर्थ है प्रोण जीवों को तवज्जो देता रूप उभार देता।
सतगुर मिलिए उलटी भई, गहना के छू ना जाए, भणत नानक सतगुर को मिल दो मरे, गुर के जब से फिर जीवे को।
अब गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं कि सदगुरु के मिलने से क्या होता, क्या मिलता है वहां से। कहते सदगुरु के मिलो मिलिए उल्टी बही, उल्टे मार्ग की चलने वाला। आप इंद्रिय फैलाव में जा रहे हैं फिर इंद्रिय उल्टने लगे, जैसे संतों के मार्ग को उल्टा मार्ग भी कह रहे। फिर राव जी ने फरमाया सदगुरु मिलिए उल्टी बही भाई, जीवत मरे ताबूझ पा। सत्स्वरूप हस्ती जब मिलती आपको इंद्रियों को फैलाव में जाने का साधन नहीं देता, जिनने बाहर मुखी साधन ये सब इंद्रियों के घाट के, उन्हें अदृश्य में ले जाना अगोचर में ले जाना, इसलिए उनकी अलग शुरू होती है इंद्रियों को उल्ट का। बाहर देख रहे हो कहते छोड़ो बाहर देखना, अंतर भी देखो, आंखों से डबल काम लो। बाहर सुनते हो अंतर भी सुनना सीखो। हमारी बाहर की दुकान खुली पड़ी है अंतर की दुकान पर। जब इंद्रिय उल्टे लगेंगे शुद्ध पिंड को छोड़ेगी, जिस बेहस हो जाएगा जीते जी मर जाओ। मरने वक्त क्या होता है, रू जब सिमटती है नीचे जगह टूटते हैं, कंठ में चाव के फिर जाती है। आप जिंदा हो जिस मुद्दा हो, तो किसी महापुरुष पूर्ण पुरुषों की तारीफ यहां से शुरू। पहला काम वो कहते हैं इंद्रियों को उल्टो, पांचों इंद्री उल्टी तानो स्वामी जी महाराज सुनवाते, उल्टो। उल्टने का मार्ग, जीते जी मरने का मार्ग संत महात्मा हमको देते रहे। नेचुरल वे है, उल्टने के लिए भी मुश्किल रस्ते भी हैं आसान भी हैं। प्राणों का मार्ग मुश्किल है जरूर, पर हम काबिल नहीं फिर जमाना। टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई नहीं कर सकता। सहज मार्ग संतों ने अख्तियार किया, उससे अनुकूली भी देश कर दिया, सासों के संयम को नहीं रखा। आप देखेंगे हर एक समाज में जिनने वाही है सब सासों से काम ले रहे हैं। हालांकि ये संतों का मार्ग, संतों का मार्ग सुख का मार्ग, सेवा सुत न जाना काई, दया करो कि मैंने हमको सुत की सेवा करनी नहीं। गुरु ने साफ करवाते हैं ये सदगुरु हम पर सिर्फ कीड़े हैं जिन्हें के कार्य हम इसमें चाल। सुत का मार्ग लोकमान्य स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सुत का मार्ग है भाई उसको सेवा, वहां प्राणों की जरूरत है। बच्चे को बैठा वो भी ज्योति को देख सकता, हाँ कोई अनबली पुरुष हो थोड़ा उभार से वो भी देख सकते। तो कहते हैं सदगुरु के मिलने से क्या होता है, मिलिए उल्टी वही कहरा कटिल जाए। कहते हैं उसको ये बयान करने का मजबूत नहीं, ये करके देखने का मजबूत है। वो बिठाएगा ऊपर आ जाओगे, कैसे ऊपर आते हो करके देखो। आप कहेंगे हैं हम तो मर जाएंगे भाई, मरोगे नहीं, वो सिल्वर कार्ड तो कायम रहती है, वो टूटती नहीं जब तक कर्मों को प्रारब्ध कर्मों का कनेक्शन टूटता नहीं, वो चलता। सो तो ऊपर ले आती इसी में किसी महापुरुष की ग्रेस लाई करती है, बिठाता ऊपर ले आता है जिसमें भूल जाते। तो कहते हैं वो उल्टने का मार्ग देते हैं ये संतों के। मतलब लोग पूछते क्या मिलता है, कौन सी तालीम देते हैं, कहते हैं उल्टने का मार्ग देते हैं। इन्हें उल्टे दिन तुम अंतर देखने वाले हो ज्योति के, अंतर सुनने वाले हो जाते हो श्रुति। ये तालीम वो देते, ये तालीम कब मिली गुरु अमरदास जी साहब को, जब गुरु अमरदास साहब के चरणों में खोल खोल कर समझा रहे। और इसी की तालीम सब और महापुरुषों ने दी है। क्राइस्ट कहता है लर्न टू डाई, मरना सीखो भाई, अगर तुम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हो। मरना किसको कहते हैं, रूह से उसका पिंड को छोड़ने का नाम मरना। गुरुमुख भगत ए आ भगत जन जीवित मरे, यही असल भक्ति है भाई। जीते जी मरने मरना सीख, गुरु प्रसादी फौजन करे किसी अन महीपुरुष की कृपा से। अगर जीते जी पिंड से ऊपर आना सीख जाओ, अपने संसार सागर से पार हो जाओगे, जन्म मन खत्म हो जाए। यही और सब महापुरुष कहते। गुरु अमरदास जी साहब ने एक और जगह फरमाया, मरने से सब जल जरे जीविया लोड़े सबको, सारा जहां मरने से भयभीत हो रहा हो, क्या आलम क्या बेलू क्या अमीर क्या गरीब सब। हर एक इंसान ये कहता है कि दस मिनट और दो साठ और मूल पर शादी जीवित मरे था उपने को अन वही पोष मिलेगा। तुम जीते जी मरने के प्रैक्टिस की जान जाओ, हाउ टू राइज अबाउट की बॉडी को। अगर ऊपर आओगे तुम डिवाइन प्लान के कॉन्शियस को वर्कर बन जाओ, देखो वीडियो कहो इट इज ही हु इज डूइंग नॉट आई। मेरा किया कछु न हो जो हर भावित तो हो, बुद्धि से नहीं कहता वो देख रहा। कबीर साहब ने फरमाया, कबीर कुकर राम को मुतिया मो को नाम, मैं राम का कुत्ता हूं मुझे लोग मोतिया कहते, गले हमारे जेवड़ी जय खींचे तो जाओ, हमारे गले में रस्सी डाली जा खाते चले जाते। वो कांक्षित को वर्कर हो जाते, जब जीते जी मरने के राज ऊपर आता तब देखता है। एक दूचा हुए को सूचे को जाने को, हम तो युद्धों के घाट पर बैठे हैं सारी उम्र बैठे रहे, जब से ऊपर आना नहीं सीखते हकीकत से दूर है। कहते नानक ऐसी मरनी जो मरे सांसद की, अगर अजीति जी मरने के राज को तुम जान जाओगे हमेशा की जिंदगी को पा कितने साफ। ये मौलाना रूह साहब ने कुरान शरीफ में दिया, माओ तुलसी मिला तो माओ नानक नींदियां मर रही है ऐसा योग तुम्हारी। सब महापुरुष यही कर मौलाना रूह साहब ने कहा, बमीरा दोस्त पेशल मर्ग अगर मैं जिंदगी खाई है दोस्त, मरने से पहले मरना थी अगर तुम हमेशा की जिंदगी चाहता। सब एक सब एक ही चले ऊसे और शैल लूज दिस लाइफ शैल सेल इट, ऊसे और शैल सेल दिस लाइफ शैल लूज इट। सब महापुरुषों की एक ही तार, ये कहां से मिलती है, जो इस उल्टे मार्ग के मायर हैं आपको बिठा कर इसको तजुर्बा देंगे, रोज रोज करो चलो। तो भाई क्या ये चीज कैसे होती है, ध्यान में आ सकते नहीं कहना तो छूटेगा, ये देखने का मन कुरान बोली तुमको करा देगा, तुम कहोगे हाँ ठीक। आगे क्या फरमाते हैं, महेश नानक सदगुरु को मिल दो मरा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं भाई जब सदगुरु मिलेगा ना फिर तुमको मरने का राहत मिल जाएगा। हाउ टू डा इस तरह तो पिंड को छोड़ तक ऊपर आ सकते हो, गुरु मुखावे जाएंगे फिर क्या होगा। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए तू ऊपर मरना। موت کا خوف نہیں روز بھی ان کو چھوڑتا ہے, جہاں جانا اس کا تجربہ اس کی زندگی میں ہے, پھر موت سے کیا خوف ہے؟ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ ہمیں مرنا نہیں آیا. کبھی بازو مارتے ہیں, کبھی آنکھیں اونچی ہوتی ہیں, کبھی نیچے, کبھی کڑوال پڑتے ہیں, بہت بری گتی میں جاتا ہوں. اگر جیتے جی مرنے کے راستے جان جائے تو موت سے کیا خوف؟ نو راؤ کے لیے, اور جہاں جانا اس کا بھی تجربہ ہے, یہ بے خوف ہے. تو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں, سدگر کو مل دو مرا گر کا شبد کرتی ہو. کیسے؟ کہ گرو کے شبد دوارا ایک نئی زندگی کو پا جاتا. چبد مرے مرے فن جیوا ہے, چبد کے دوارے مرتا پن سے اوپر آنا سیکھ جاتا ہے اور نئی زندگی کو پا جاتا. سما خوشی سب یہ بھی بال ہے, یو کین ناٹ اینٹر دی کنگڈم آف گاڈ. سب ایک ہی بات کر رہے ہیں, فلیش اینڈ بلڈ کین ناٹ انہیرٹ دی کنگڈم آف گاڈ. جسم جسمانیت میں جب تک تم ہو, تم پرماتما کی بادشاہ کے حصے دار نہیں بن سکتے. سب مہاپش ایک بات کر رہے ہیں, تو یہی کہہ رہے ہیں یہ کب بنے گا؟ کہتے ہیں جب سب کو مل دو مرا, یہ سندھی زبان ہے, اس سے ملنے سے تمہارے مرنے کا راحت حل ہو جائے گا. اس کے شبد اور شبد گرو کا شبد, ایسا شبد گرو دوارے ملتا, باہر کی شبد تو ہر کسی سے ملتا گانا بجانا. وہی شبد پاور جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, جسے دھرتی اور آکاش اور نام کی طرف کی تعریف کی گئی, وہ گٹ گٹ میں ہے. دونوں کی جائے شبد نشا, اس میں ڈلیم بھی ہے, اس میں لائٹ بھی ہے. تو کہتے ہیں یہ جب کوئی سچ روپ ہستی ملے گی تو وہ تم کو مرنے کے راز کو سکھائے گی, شبد کی کمائی سے, شبد کو کانٹیکٹ کرنے سے. نتیجہ کیا ہوگا؟ تم زندگی کی موت کا جو سوال ہے, نئی جیون پا رہے ہو, سدا کی جیون, جہاں سے پھر موت نہیں پنڈ ہے گی. جس اگر جیتے جی سے تم اوپر آنا سیکھ رہے, انوں کے گھاٹ کے اوپر آ کر نام کے رس کو پا گئے, اس مہارت کو پا کر ان کو بھوگوں
کی ذات وہی ہے جو پرماتما کی ذات ہے. کو کبیر یہ رام کی ہے. سماجی ہم لوگوں نے بنائی اس لیے ایک انسان مل جل کر رہنے والی ہستی ہے, سوشل بینگ. خاص خاص اگر تو قوانین بنائے جائیں, اس کے مطابق انسان جیون بسر کر کے نیک پاک افسانچاری بنے. اور منوج یاترا جو ہے, جیون یاترا, یہ سکھ سے بتیت ہو. انسان انسان کے کام آئے, ایک گڈ ورلڈ سٹیزن بنے, یہ سماجوں کا عادت ہے. پہلا قدم شریعت ساری دائی ہے, یہ بلے شاہ کہہ رہے ہیں. شریعت دایا کا کام کرتی ہے, بچے کے جنانے میں مددگار ہے. ایسے ہی رسم رواج جتنے ہیں, قوانین سماجوں کے آپ کو اپنے, وہ اپنی آتما کو انبھو اور پربھو کے انبھو کرنے کے لیے مددگار ہے, زمین بناتے ہیں. پہلا قدم ہے جو ہر ایک انسان کو اٹھانا پڑتا ہے. آتما چیتن ہے, یہ جزو ہے, اور مالک کہو پرماتما کہو کل ہے. جس کا جزو ہے اس کا کل بھی ہے. ہر ایک جزو کے اندر یہ قدرتی خواہش موجود رہتی ہے کہ وہ کل سے ملے. تو یہ تلاش کہو, کھوج کہو, ہر ایک انسان کی